भगवद्गीता के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम 10वें अध्याय श्रीमद् भगवद्गीता के विभूति योग के चौथे विभाग का आज शुभारंभ करेंगे, भगवान की विभूतियाँ। भगवान की विभूतियाँ ये बस 19 श्लोक से लेके और 42 तक, अब पूरे का पूरा अध्याय 19 से 42 तक भगवान की विभूतियाँ। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच अंतते कथ्यष्यामि देव्यै आत्मविभूत्यः प्राधान्यतः कुरो श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हंतते कथ्यष्यामि। हंत शब्द का अर्थ है मेरी कृपा से, ये दूसरा हंत है। हंतते कथ्यष्यामि का मतलब है मैं आपके ऊपर कृपा करके आपको आपको बताऊंगा। हंत यहाँ स्नेह प्रेम का सूचक है, तो आपको मैं स्नेह और प्रेम के कारण बताने जा रहा हूँ। हंतते कथ्यष्यामि किसके विषय में? प्रधान्यतः, जो मेरी प्रधान विभूतियाँ हैं वो। सब नहीं, सब क्यों नहीं बोला? उसका कोई अंत नहीं है, ना अंतो विस्तरस्य, विस्तार करने उसका अंत ही नहीं है। मेरी विभूतियां कितनी है? बोला अनंत है। क्या बताने जा रहे हैं भगवान? मम विभूति है। क्या बताने जा रहे हैं? विभूतियां बताने जा रहा हूं। कुरु श्रेष्ठ, ये अर्जुन का विशेषण है, क्योंकि आप कुरु वंश में सर्वश्रेष्ठ हैं। नास्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरी विभूतियां का कोई अंत नहीं है, मेरी विभूतियां अनंत है। सो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? मैं अपनी प्रभुपाद ने क्या है, प्रभुपाद जी का अनुवाद क्या है?
श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ईश्वर असीम है।
क्या क्या बताया, कितने रूपों का क्या लिखा है?
मुख्य वैभव,
वैभव का, वैभव का मतलब वही विभूतियों का वर्णन करूंगा। हंत का अर्थ प्रभुपाद ने क्या लिखा है, पहला शब्द क्या है?
हाँ
मैं बताऊंगा, तो भगवान किसी को बताएंगे तो करुणा करेंगे तभी बताएंगे। तो ये भाव दोनों आचार्यों ने लिखा है। हंत का मतलब है आपके प्रति हमारा स्नेह है, और कृपा करके आपको मेरी मुख्य विभूतियों के विषय में बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं हंत जो है भगवान की करुणा का सूचक है। हंत का अर्थ है भगवान करुणा करके बता रहे हैं, और सब नहीं बताऊंगा, सब का मतलब घास और ईंट पत्थर की बात नहीं करूंगा, ऐसा लिखा है। जो बहुत मुख्य है, प्रसिद्ध है, उनकी बात करूंगा। तो विभूति की अर्थ क्या है? विभूति किसको कहते हैं? जिसको देखने से भगवान याद आ जाए। और भगवान क्या है? जो सबको कंट्रोल कर, ईश्वर। तो यहां विभूति शब्द को समझना चाहिए कि ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति या विषय जिससे भगवान की ईश्वरता का सूचना मिले। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो, जैसे रुद्राणाम शंकर, रुद्रों में शंकर में हो, जैसे ऐसा ऋषि नाम मुनि नाम व्यास, तो उससे भगवान की ईश्वरता की सूचना मिले, उसको विभूति कहते हैं। अब तो विभूति को किसको कहते हैं? जो इतना शक्तिशाली हो कि उसके द्वारा भगवान की शक्ति का और भगवान की ईश्वरता का अनुभव हो। कुछ सामान्य हैं और कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जो विभूतियों के रूप में यहां वर्णन की गई है। और सबको भगवान का ही, भगवान की विभूति भी भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न है, ऐसे भगवान की विभूतियां भी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि उसमें जो भगवान की शक्ति है उसकी सूचना देते हैं। जितना इस अध्याय में कहा है इतने ही भगवान की शक्तियां नहीं है, भगवान की शक्तियां अनंत हैं, परंतु जिनको देखकर भगवान की भगवत्ता का ध्यान आए उसका वर्णन किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की महानता और उनकी विभूतियों का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। भगवान अनंत शेष, अनंत मुखों से, अनंत काल से वर्णन कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, तो कैसे वर्णन पूरा हो सकता है? भगवान अनंत भी नहीं कर पा रहा है। और एक इसका कारण यह भी है, जीव की इंद्रियां सीमित हैं, तो भगवान की पूर्णता को कैसे समझ सकेंगे? भगवान के पूर्ण कार्य उनको कैसे समझ सकेंगे? हम सीमित हैं, कितना समझ सकते हैं? फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को भक्त समझने का प्रयास करते हैं। परंतु यह सिद्धांत नहीं है कि वो सब कुछ समझ पाएंगे। किसी विशेष एक समय में या विशेष किसी एक जीवन में भगवान की सब विभूतियों भक्त समझ पाए, यह संभव नहीं। क्या लिखा है देखो, फिर भी भगवान के भक्त भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। परंतु सिद्धांत यह है कि ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण को एक जीवन में या एक विशेष समय में समझ पाएंगे या किसी जीवन की अवस्था में समझ पाएंगे, ऐसे लिखा है। इसका अर्थ है हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, परंतु सारा समझना संभव नहीं है सबके लिए और सब समय। कृष्ण के विषय में जब वर्णन करते हैं तो वो विषय इतना अमृतमय है कि उसी में तृप्त नहीं होते हैं, तो दूसरे का सोचने का ही समय नहीं मिलता है, इसलिए भक्त उसी में आनंद लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां और विभिन्न शक्तियों का वर्णन करने से मैं भक्त बहुत आनंद लेता है, और इसलिए अर्जुन भगवान की विभूतियों के विषय में चर्चा करना और सुनना चाहता है। तो प्रभुपाद जी का भाव यहां क्या है कि भगवान की विभूतियां तो अनंत है, फिर भी भक्त भगवान की महिमा को सुनने में रस लेता है, आनंद लेता है, इसलिए अर्जुन भगवान से विभूतियों के विषय में पूछ रहे हैं। तो भगवान की महिमा सुनना सुखदायी है, भले अनंत को न समझ सके, पूरा न समझ सके, जितना समझे उतना ही सुखदायी है। और भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये जीव मेरी विभूतियों को पूर्ण रूप से कहाँ समझ पाएगा। इसलिए वो अपनी विशेष मुख्य विभूतियाँ जो उनकी नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं, विभिन्न शक्तियाँ हैं, उसका वर्णन करने के लिए राजी हुए। प्राधान्यत का मतलब है विशेष, खास, जो विशेष है। ये महत्वपूर्ण है कि कुछ विशेष ही भगवान के विभूतियों का यहां वर्णन किया जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से समझना असंभव है। अब प्रभुपाद जी विभूति की परिभाषा लिख रहे हैं। ये लाइन विभूति की परिभाषा है, पढ़िए।
इन सबको समझ पर इस श्लोक में प्रयोग विभूति शब्द ने स्वर का सूचक है, जिनके द्वारा श्री भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं।
तो विभूति शब्द इस श्लोक में जो है वो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जिसके द्वारा वो जगत को संयम या नेम में रखते हैं, अथवा भगवान की ईश्वरता का। विभूतियां भगवान की ईश्वरता का सूचक है। विभूतियां क्या है? भगवान की ईश्वरता की सूचक है। इसका मतलब भगवान कैसे भौतिक जगत को नियंत्रण में रखते हैं। और अब इस अध्याय का जो प्रभुपाद जी ने नाम दिया है उसकी परिभाषा लिख रहे हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ है क्या लिखा है? विलक्षण ऐश्वर्य। अंग्रेजी में थोड़ा कुछ अलग ही है। एक साथ ठीक है, एक्सप्रेस विलक्षण ऐश्वर्य। अब दो शब्द आ रहे हैं, एक तो है निर्विशेषवादी और दूसरा है सर्वेश्वरवादी, का मतलब सब भगवान। वो भगवान की विशेष ऐश्वर्य को नहीं समझ पाएंगे और न ही भगवान के शक्तियों को कैसे प्रकट होती है समझ पाएंगे, उनकी प्रकृति को भी नहीं। निर्विशेषवादी नहीं समझ पाएंगे। निर्विशेषवादी का मतलब वो कहते हैं कोई विशेषता है नहीं, तो फिर सभी सभी सब माया है, प्रपंच है, इसलिए वो कैसे समझेंगे। वो किसी चीज को सबको माया ही समझते हैं। भगवान निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं, और विभूतियां तो विशेषता है। और जो सबको भगवान मानते हैं फिर उसके लिए तो सभी भगवान है, तो विशेष क्या हुआ। सब वो कहावत है एक कि भाई तुम भी बोलोगे कि मैं रानी हूँ राजा के, तुम भी बोलो रानी हो तो फिर गधे कौन चराएगा। सभी अगर भाई सभी कहेंगे हम गुरु बन जाएंगे तो शिष्य कहाँ से लाओगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो जब प्रार्थना की जा रही है तो भगवान है तब तो कोई सेवक प्रार्थना कर रहा है ना, बराबर है, तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। ये आपने ईशो उपनिषद में पढ़ा होगा, भाई जीव अगर भगवान के समान है तो प्रार्थना क्यों कर रहा है, उसको कोई कर प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते निर्विशेषवादी और सर्वेश्वरवादी, सारे ईश्वर है, कोई ईश्वर नहीं है, सारे ईश्वर है। वो भगवान की विशेष ऐश्वर्य या विभूतियों को नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे अपनी नाना प्रकार की शक्तियों को प्रकाशित करते हैं। कहाँ करते हैं कोई पूछे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक जगत में और आध्यात्मिक दोनों जगतों में भगवान की शक्तियों की विशेष क्या है, फैली हुई है, वो मैनिफेस्टेशन के लिए लिखा है वैरायटी। सीधा इसका अर्थ है कि भौतिक आध्यात्मिक जगत में अनेक भगवान की विशेषताएं हैं, तो एक बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निर्विशेष में मानते नहीं है और भक्त मानते हैं, तो वहां भगवान की विशेषताएं हैं। अब भगवान वो बताया नहीं जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति इस जगत में भगवान की ईश्वरता का अनुभव कर सकता है। आप पहला श्लोक विभूतियों का शुरू हो रहा है, 20वां, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। गुणाकेश अर्जुन को संबोधन है। गुणाकेश का क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ है गुणा का ईश्वर। गुणा का अर्थ है निद्रा और ईश का मतलब उसका स्वामी। इसका मतलब निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। और गुणा काशा का दूसरा क्या अर्थ है? तो निद्रा अज्ञान के समान है और अज्ञान के ऊपर जिसने, अच्छा और क्या अर्थ इसका है? गुड़, गुड़ गुड़ किसको कहते हैं? गुड़ा गुड़ा ईश जो भगवान को प्यारा लगे, मीठा लगे, जैसे गुड़ मीठा लगता है ना, तो ईश्वर को भगवान ऐसे ही मीठा लगता है। और एक केश अगर कहें तो जिसके बहुत सुंदर घुंघरालू केश है, ऐसे अर्जुन के लिए 3-4 इसके अर्थ गुणाकेश का है। गुड़ वाला अर्थ भी चक्रवर्ती पाद ने किया है, उसका अर्थ ऐसे किया है गुड़ गुड़ क ईश। का मतलब ब्रह्मा, ईश का मतलब शंकर, जो शंकर और ब्रह्मा को भी प्रिय है भगवान का भक्त। तो अर्जुन ऐसा है जिसने शंकर को भी प्रसन्न किया था, तो ब्रह्मा और शंकर के लिए भी जो प्रिय है, तो जो भक्त को भगवान को प्रिय है वो गुणाकेश। तो ये एक और गुणाकेश की गुड़ मीठा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है भक्त। ये तो गुणाकेश, मैं प्रकृति की आत्मा हूं। देखो इसको मायावादी कहते हैं, भगवान कहते हैं ना मैं आत्मा हूं, तो आत्मा सो परमात्मा, ये मायावादियों का इस श्लोक का तोड़ मोड़ के अर्थ है। तो भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं, किसका? क्या लिखा है? अहम आत्मा गुणा के सर्वभूताश स्थित, मैं सारी भौतिक प्रकृति की आत्मा हूं। तो भौतिक प्रकृति की आत्मा कौन है? जो भौतिक प्रकृति की सृष्टि करेगा वही आत्मा है ना, जिसके कारण भौतिक सृष्टि कार्य करे। तो भौतिक सृष्टि को कौन प्रकार? पुरुष अवतार। पुरुष अवतारों में कौन सा किसका ईश्वर है ये तो हम समझेंगे। तो ये आत्मा के लिए नहीं है, ये असल में परमात्मा के लिए। तो इतना आप इस आत्मा का अर्थ ये समझिए, ठीक है? मैं प्रकृति की आत्मा हूं और हरेक जीव के हृदय में मैं विराजमान हूं। सर्वभूताश्य स्थित, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं। अब कहते हैं मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। अब ये जीव तो नहीं है ना, तो जीव कैसे कहेंगे? क्या सृष्टि जीव ने की है? पालन जीव कर रहा है क्या? नहीं। तो ये किसका सूचक है? ये सूचक है असल में गर्भ करुण दक्षाई विष्णु का, क्योंकि परमात्मा के द्वारा भौतिक जगत का संचालन करते हैं। ये जो 3 अवतार है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये गुण अवतार है ना, ये परमात्मा के ही माध्यम से होते हैं। तो भौतिक सगत जगत का सारे कार्य परमात्मा के माध्यम से होता है, संचालन जो भी है। तो अब चक्रवर्ती पाद देखते हैं, एक मेरे अंश के द्वारा आप मेरी विभूतियों का अनुभव कर सकते। तो मैं आत्मा हूं, प्रकृति की आत्मा हूं, महत तत्व को मैं प्रकट करता हूं, पुरुष अवतार मैं हूं, परमात्मा मैं हूं, ये अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थित है, इसके अर्थ है पुरुष अवतार। तो प्रधान कौन सा शब्द मैंने कहा, महत्त्व को कौन प्रकट करता है, कारुण दक्षा विष्णु जो सारे ब्रह्मांड पैदा करता है, फिर हर ब्रह्मांड की सृष्टि कौन करता है, गर्भदक्षा विष्णु, और सबके हृदय में परमात्मा कौन है। तो ये इन सब पुरुषों के, मैं इस पुरुष के रूप से पूरी सृष्टि का कार्य करता हूं, तो इसको कहते हैं भगवान की सृष्टि लीला। ये करते हैं जो है कारण दक्षा विष्णु और गुड़ाकेश। कहां भगवान आप कहां रहते हुए सारी सृष्टि का स्वामी है, आत्मा है, तो कहते हैं मैं वैराज, मैं अंतर्यामी हूं, विराट पुरुष का अंतर्यामी हूं। तो विराज या विराट पुरुष, वैराज किसको कहते हैं, वैराज सारे जीवों का समूह, सारे जीवों का समूह, सारे जीव उनका समूह, उसको वैराज कहते हैं। और मैं अंतर्यामी हूं विराट पुरुष का, और यह है गर्भोदक्षाई की सूचना। तो गर्भोदक्षाई जीव समूह का और विराट पुरुष की आत्मा है। कौन है विराट पुरुष की आत्मा, गर्भोदक्षाई विष्णु। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं अंतर्यामी के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये किसका सूचक है श्लोक में, सर्वभूताश्य स्थितम, सर्वभूताश्य स्थितम क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा। मैं जगत का आदि हूं, मध्य हूं, अंत हूं। बलदेव विद्याभूषण बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि आप मेरा तीन पुरुष अवतारों के रूप में ध्यान करो, ये मेरी पहली विभूति समझो। बाकी सब जो इस भौतिक जगत में है ना, ये भौतिक जगत ही मेरी विभूतियों के माध्यम से प्रकट होता है। तो तीन मेरी विभूतियों का आप ध्यान करो। क्यों आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि आप अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर सके हो। गुड़ाकेश का अर्थ है क्योंकि आपको अज्ञान से ऊपर हो इसलिए ये समझ सकते हो। आपको मुझे तीन प्रकार से परमात्मा समझो। पहला, एक सारी प्रकृति का उत्पन्न करने वाला कारण दक्षाई, एक ब्रह्मांड की आत्मा गर्भोदक्षाई, हर एक के हृदय में आत्मा फिर। तो तीन काय से मैं आधार हूं। एक दो शब्द ऐसे जानकारी के लिए आप याद कर सकते हैं, एक समेष्टि और वैष्टि। समेष्टि का मतलब सबका, वैष्टि का मतलब एक व्यक्ति का। तो वैष्टि में भी मैं परमात्मा हूं अंतर्यामी हूं, और समेष्टि का भी मैं परमात्मा हूं गर्भोदक्षाई के रूप में, और वैष्टि का परमात्मा हूं क्षीरोदक्षाई। तो दो शब्द ये और समझना, क्या कौन से, प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है क्योंकि अंधकारमय अज्ञान से के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है। जो अज्ञान की निद्रा में सोए रहते हैं उनके लिए परम पुरुष भगवान को समझना भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में भगवान के विस्तार को समझना संभव नहीं। तो प्रभुपाद जी गुड़ाकेश की भाषा के साथ अर्थ के साथ परिभाषा लिख रहे हैं। पहली लाइन प्रभुपाद जी की गुड़ाकेश का अर्थ और उसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? जो अज्ञान के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेगा वो भगवान की न भौतिक और न आध्यात्मिक महत्व को या विभूतियों को समझ सकेगा। और दूसरा कारण बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अज्ञानता से ऊपर है इसलिए भगवान बता रहे हैं। इसका मतलब भगवान मूर्खों के ऊपर अपना टाइम खराब नहीं करते। कौन है मूर्ख? निर्विशेषवादी, नास्तिक, ये सब अज्ञान में पड़े हैं। तो इनको भगवान काय के लिए कुछ कहें? इसका मतलब भगवान से सुनने के लिए अथवा भगवान के विषय में सुनने के लिए अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पूरी इस भौतिक जगत की सृष्टि में मेरे प्रथम विस्तार के रूप से उसकी आत्मा हूं। तो ये प्रथम विस्तार कौन सा है? पुरुष, पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार आते कहां से है? संकर्षण से। कौन से वाले संकर्षण से? द्वितीय संकर्षण से। और द्वितीय संकर्षण कहां से आता है? नारायण से। नारायण आता है प्रथम संकर्षण से। प्रथम संकर्षण आता है बलराम जी। बलराम जी आता है कृष्ण से। तो ये लंबा सारा वंशावली है। इसका अर्थ है जो सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान करते हैं तो इसका मतलब वो पोते के पोते का ध्यान करते हैं, बाप का ध्यान नहीं करते, पोते का पोता। तो इसलिए वो आज कच्चे हैं, अभी पके नहीं है। अब परमात्मा का ध्यान करते हैं जो तीन विष्णु में एक है, फिर इसके ऊपर संकर्षण, फिर नारायण, फिर दूसरा संकर्षण, फिर बलराम, फिर कृष्ण। इतनी तो पीढ़ी का पता ही नहीं। मैं आपसे पूछूं आपके दादा का नाम क्या है? आजकल के बच्चों को नाम नहीं आता है, नहीं आता है ना? एक मैं दुबई में बच्चा छोटा आया, मैं तो ये तेरा क्या लगता है? बोला मेरी मम्मी का पापा है। तो तेरे क्या लगता है? पता नहीं। अब मैं सच्ची घटना बता रहा हूं कि हमारे को तो तीन पीढ़ियों का भी पता नहीं। हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे दादा पापा बैठ के सात पीढ़ियां तो सुना देते थे, इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका बाप ये। तो उसके पीछे भाव ये होता था, सबका बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का बाप विष्णु, विष्णु जी का बाप कृष्णा। तो भगवान तक पहुंचना चाहिए। अब ये समाचार कहीं मिलता नहीं, पता नहीं किस कहां से आए, पता नहीं।
गुरुदेव कथा को बता रहे थे एक बच्चा से अमेरिका में, जो दूध कहाँ से आता है? तो वो था डेयरी से आता है।
डेयरी से? यहाँ तो बॉम्बे में पूछा, बोला थैली से। बोला थैलियाँ कहाँ कहाँ होती है ना? पहले लिखा सी फार, बोला काओ। तो काओ का फोटो आया ना, गाय का। तो बच्चा बोलता है इसमें थैलियाँ कहाँ होती? इसका मतलब थैली का है ना वो, ये गाय के अंदर से कहीं से थैलियाँ निकलती हो। तो ये लोग आधुनिक ये परंपरा समझना बहुत, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लोग परंपरा में ब्रह्म और परमात्मा तक ही समझते हैं। इसका मतलब अपने बाप को नाम से भी नहीं जानते। जैसे छोटा बच्चा है ना, बापा पापा पापा करता, नाम नहीं आता उसको, ऐसे उनकी स्थिति है। तो महत्तत्व की आत्मा कौन है? कारण दक्षाय विष्णु। अब प्रभुपाद लिखते हैं अपने आप सृष्टि नहीं होती है, परंतु इसमें महाविष्णु प्रवेश करते हैं महत्तत्व में। और फिर दूसरे में प्रभुपाद जी परमात्मा का लिखते हैं, हर जीव की आत्मा में आते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी सामान्य कहते हैं कि हमारा अब उदाहरण देखें, उदाहरण दे रहे हैं कि हम जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, तो ऐसे ये ब्रह्मांड भी जीवित है कि इसके अंदर भगवान है। जैसे हमारी आत्मा हमारी हमारे जीवन का कारण है, ऐसे भौतिक जगत की सृष्टि का कारण इसकी आत्मा है, वो है भगवान। अगर हमारे शरीर में आत्मा न हो तो न शरीर बड़ा होगा न शरीर बढ़ेगा, तो ऐसे सृष्टि भी कुछ नहीं करती। आप देखो ब्रह्मांड वहाँ निकलते हैं जब, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जब तक उसमें विष्णु प्रवेश नहीं करता है तब तक वो न बढ़ते हैं न कुछ कार्य होता है। तो उदाहरण प्रभुपाद देकर समझा रहे हैं, जब तक पूरे ब्रह्मांड में भगवान आत्मा के रूप से प्रवेश नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं होगी। तो लिखे इसलिए लिखा है परमात्मा, सिर्फ इसलिए कि हम आत्मा से उसको अलग समझें। शुभल उपनिषद में क्या लिखा है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांत्रयामी सर्वशेषी च नारायण। इस श्लोक का अर्थ अपने आप कीजिए, प्रकृति आदि, प्रकृति के आदि में सर्वभूतांतरयामी, सारे प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में, सर्वशेषी जब सारे चले जाते हैं जो बाकी बचता है वो नारायण है। पर फिर प्रभुपाद जी त्रि पुरुष अवतारों का वर्णन करते हैं, कहाँ त्रि पुरुष अवतारों का वर्णन, तीन का कहाँ वर्णन है, सात्वत तंत्र किसको कहते हैं, सात्वत तंत्र है पंचरात्रा, नारद पंचरात्रा। तंत्र है दो प्रकार के, एक तामसिक एक सात्विक। तो सात्विक तंत्र हमारा है विग्रह की उपासना का, पंच नारद पंचरात्रा जिसके द्वारा हम भगवान के मंदिरों की स्थापना करके विग्रह की उपासना करते हैं, ये सात्विक तंत्र है। और तामसिक तंत्र है जो तांत्रिक लोग काला जादू करते हैं, वो भी तंत्र है, वो तामसिक है और ये सात्विक है। विष्णु तुत्रे निरूपाणी पुरुषाख्यानी अथो विदुहो। तो एक विष्णु तीन पुरुष अवतार में है ये आप जानो, कारण दक्षाई गर्भ दक्षाई विष्णु खीरो दक्षाई विष्णु। और जो इसको जानता है वो मुक्त हो जाता है, श्लोक का दूसरा भाग है, जो ऐसे विष्णु को जानता है वो मुक्त हो जाता है। और ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है, किसका, महाविष्णु का, कारणव जो ये श्लोक है, कौन सा श्लोक है लिखा है, कारणव जले भजति स्म योग निद्राम। ये श्लोक कौन से विष्णु का सूचक है, कारुण दक्षाई का। श्री कृष्ण जो सारे कारणों के कारण है वो कारण दक्षाई विष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं, इसलिए भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अब 21वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो अभी तक कौन सी विभूति हमने सीखी, एक ही विभूति सीखी है, पुरुष अवतार और उसके तीनों। अब हम आ जाते हैं दूसरी विभूतियों में, आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरिचिर मरुताम अस्मे नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, आदित्य के पुत्र 12 आदित्य उसमें मैं विष्णु हूं। तो कौन सा विष्णु है आदित्यों में, त्रिवर कर्म उपेंद्र बलि बलि महाराज के वहां जो गए थे कौन, वामन देव। तो ये इसका नाम आना चाहिए, आदित्यों में मैं कौन सा विष्णु हूं, वामन देव उपेंद्र त्रिवर कर्म। ज्योतिषाम रविर अंशुमान, ज्योतिषाम जो प्रकाश देने में देने वाले हैं उसमें अनेक किरणों वाला मैं सूर्य हूँ, रश्मि जो जो अंशुमान है क्या किरणों का वर्णन है, अनंत किरणें जिससे निकलती है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं अनंत किरणियों का स्रोत, अनंत किरणों का स्रोत प्रकाशमान जो भी वस्तु है उसमें मैं सूर्य हूं। तो सूर्य भगवान की दूसरी विभूति। अब इसमें क्या है, आदित्य में विष्णु भगवान की विभूति में बताया, ये विष्णु तत्व को बता दिया और सूर्य बताया ये देवता है, फिर भी इसको सूर्य नारायण हम कहते हैं। तो एक महात्मा कहते हैं तो बैठे थे, बोला भगवान दिखाओ, बोला कल सुबह आना दिखाऊंगा। तो वो सुबह आया, बोला दिखाओ, बोला देखो ऊपर सामने दिख रहा है, बोला क्या ये तो सूर्य है, बोले लिखा है ना सूर्य, भगवान कहता है मैं हूँ, क्या लिखा है मैं आम मैं हूँ, तो ये मेरी विभूति है, मेरी आँख है, तो आप भगवान की आँख देख के खुश हो जाओ ना, तो लाते खानी है भगवान की पाँव देखना है तेरा आँख से काम नहीं चलेगा क्या नहीं तो सूर्य भगवान जिससे प्रकाश निकलता है उसमें जो प्रकाश देने वाली चीजें उसमें मैं सूर्य हूं। तब ब्रह्मा संहिता का श्लोक याद आना चाहिए ना, सकल ग्रहाणाम यस्या यह चक्षु सकल ग्रह राजा सकल ग्रहाणाम सूर्य। तो ये सूर्य में मेरी विभूति है, दो विभूति हो गई इस श्लोक में। तीसरी है मरीचम मरुताम अस्मि, मरुत किसको कहते हैं, उन 50 मरुत कैसे उत्पन्न हुए, दिति के साधना के अंदर इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में भंग डाल के वज्र से एक के साथ और साथ के उन 50 टुकड़े हुए, परंतु क्योंकि किया साधन भजन भगवान का था तो ये दिति के पुत्र दैत न होकर देवता हो गए, उसमें मैं मरीचि हूं, उनमें मैं मरीचि हूं। ये भागवत के 6:18 में छठे स्कंद के 18वें अध्याय में इसका वर्णन है। वो भी मरीचि होगा, लेकिन इनमें उन 50 में ये है इनके ऊपर अधिपति मरीचि वो होगा, ऐसे 50 के कभी कभी 50 देखते हैं, उन 50 ये एक और, ऐसा मेरे को एक ध्यान आ रहा है। मरुत गण का नाम मरीचि है, नहीं मरुतु मैं मरीचि हूं, मरुतु मैं मरीचि हूं, आई एम मरीचि मैं मरीचि मरुतु मैं मरीचि हूं। और अंत में क्या है चौथी विभूति, नक्षत्राणाम आम शशि। अब देखो सूर्य अलग है और चंद्रमा अलग है, ये है नक्षत्र, ये नक्षत्र सूर्य मंडल है, ये नक्षत्र है, इसको प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत बोलते थे, नक्षत्रों में मैं सूर्य में चांद मेरी विभूति है। तो ये चार विभूतियां और हमको यहां मिली। 12 आदित्यों में मैं वामन देव हूं, 12 प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है वो सूर्य मैं हूं, और उन 50 मारुतों में मैं मरीचि हूं, और मैं चंद्रमा हूं जो अमृत की वर्षा करता है नक्षत्रों में। इसका तात्पर्य नहीं लिखा है क्या प्रभुपाद जी ने, लिखा है
आदित्य 12 में जिनमें श्री कृष्ण प्रधान है, आकाश में टिमटिमाते,
देखो लिखा कृष्ण प्रधान है लेकिन कृष्ण कृष्ण की विभूति नहीं हो सकता, कृष्ण कृष्ण की विभूति क्योंकि आगे आएगा, एक आएगी विभूति वासुदेव, वृष्णी नाम वासुदेव अस्मि, अब वृष्णि में मैं वासुदेव हूं अगर कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण अपनी विभूति कैसे होगा, तो वहां लिखा है बलराम, वहां बलराम लिखेगा, या ऐसे लिखेंगे वृषनिवासियों में मैं वासुदेव हूं जिसके घर में भगवान प्रकट हुआ, उसके दो अर्थ ऐसे करेंगे। क्यों? कृष्ण जब अपनी विभूतियां बता रहे हैं तो वो विभूति तो नहीं हो सकते है ना, वो विभूतियों का स्वामी है। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है? तो इसलिए आदित्य में मैं विष्णु कौन सा, वामन देव, आगे लिखा है, देखिए क्या लिखा है।
आकाश में टिमटिमाते ज्योतिष पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को श्री भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में
तेजस्वी नेत्र कहा गया है, कौन सा शब्द है ये? चक्षु, चक्षु नेत्र। हाँ,
ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को श्री भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाह,
आप प्रभुपाद देखो 50, मैंने कहा मेरे को ध्यान में है 50 है,
जिनमें से वायु मधुर खाता मरीचि श्री कृष्ण प्राप्त के लिए।
तो उन 50 तो जो जो आए द्विति से और एक पहले से था, वैसे ऐसे लगा, ऐसे जैसे लग रहा है।
नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र, अतः हुआ श्री कृष्ण का प्रकृति।
अब पढ़ते हैं 21वां श्लोक, और 21वां तो हो गया, 22वां और बलदेव विद्याभूषण की टीका है, 21वां पढ़ेंगे, हो गया ना, 22वां प्रभुपाद ने लिखा है आदित्य में। हाँ ठीक है, कृष्ण प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं? अब लिखा है ना, अब और कुछ लिखा है प्रभुपाद ने? हाँ,
इस श्लोक में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को प्रावर्तित करते हैं।
इसका मतलब जो आकाश में तारामंडल में जितने ग्रह हैं उनके अंदर प्रकाश सूर्य से आता है, उसी प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं का मतलब फैलाते हैं,
जैसे शीशा से कोई लाइट किया तो।
हाँ, और फिर क्या लिखा है?
वैदिक कोई ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं।
इसका मतलब प्रकाश एक सूर्य से है जो सारे ग्रहों का राजा है, और सारे ग्रहों में जो प्रकाश है वो सूर्य से आता है।
सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि श्रीमद् भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है।
तो नक्षत्र है, सूर्य नहीं है, प्रकाश अपना नहीं है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश देता है। 22वां, वेदानां साम वेदोऽस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। वेदों में मैं साम वेद हूं, चार वेद हैं उसमें साम हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर गाने की विद्या है, बहुत सुंदर से गाना बहुत अच्छा है। और आगे आगे आएगा साम, साम वेद में भी मैं कुछ और हूँ, और भी आएगा आगे। और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वास्व का मतलब इंद्र, देवताओं का अधिपति मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चासम, इंद्रियों में मैं मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। क्यों मैं सामवेद को मेरी विभूति क्यों मानूं? क्योंकि उसमें बहुत मधुर सुर में गाया जाता है, ये कारण है। देवताओं में मैं वास्व इंद्र हूं क्योंकि राजा है। इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि सारी इंद्रियों को मन ही प्रेरित करता है, परंतु जिसको वश में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी परिभाषा इसके ऊपर ये होती है कि मन अगर भगवान की विभूति है तो ये केवल जब भगवान के चरणों में लगेगा तभी विश्राम पाएगा, और किसी का ये आंसी नहीं है तो क्यों जाएगा कहीं और सुख पाएगा? न धन में सुखी होगा, न पुत्र परिवार में सुखी होगा। और आप किसी को मन दे के कुछ नहीं कर सकते हो, अब घर वालों को बोलो मेरा मन ले लो, मैं बैठा हूँ घर में जप करूंगा, बोले जा बाहर से धन ला, मन को क्या करेगा, कोई आपका मन नहीं लेगा, एक भगवान है जो कहता है मन मेरे को दे दो क्योंकि मेरी विभूति है वापस लाओ, तुमको दिया था उधार में तुम संभाल नहीं पाए। तो मन जो है भगवान की विभूति है, केवल भगवान में ही संतुष्टि लेगा और कहीं नहीं लेगा। ज्ञान शक्ति या चेतना जो जीवों में है वो मेरी विभूति है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जड़ और चेतन में अंतर क्या है, जड़ चेतन नहीं है और चेतन चेतन है, सीधी सी बात है, क्योंकि जड़ में चेतना नहीं है और जीव में चेतना है, तो जीव में जो चेतना है वो चेतना कहाँ से आती है, वो भगवान की विभूति है। तो ये चेतना कहाँ से आती है, हम वैसे पूछें किसी, तो आत्मा से आती है, तो आत्मा किसका कारण से, भगवान का है, तो ऐसे भगवान चेतना का कारण है, भगवान चेतना का कारण कैसे, आत्मा की उसकी विभूति है। इसलिए प्रभुपाद जी अब कहते हैं कि चेतना भौतिक पदार्थों को मिला के नहीं बनाई जा सकती। 23वें श्लोक में आगे की विभूतियों को पढ़िए, रुद्राणाम शंकरचास्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक्षास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। वितेशो, वित्त का मतलब धन, ईश का मतलब स्वामी, धन के स्वामी मैं यक्ष रक्षसाम कुबेर हूं। धन का स्वामी कौन है, कुबेर। 11 युद्ध रुद्रों का नाम चाहिए क्या, ये भागवत में लिखा है 3:12:12 में 11 युद्रों का नाम, मन्यो मनो महिंसा महान शिव ऋतध्वज उग्र रेता भव काल वाम देव धृतवर्त। ये 11 रुद्र है। 12 आदित्य का नाम भी सब कल को भेज दो, सबको पता लगे कौन सा है। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वितेश रक्ष यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षस। एक ने ब्रह्मा जी को कहा छोड़ो, एक ने कहा खाओ, तो एक बने यक्ष एक बने राक्षस, तो उनका स्वामी मैं कुबेर हूं। कुबेर किसका पुत्र है, रावण का आधा भाई है, बाप एक है माँ अलग है, विशर्वा ऋषि का, विशर्वा ऋषि का पुत्र है कुबेर, विश्वरका ऋषि का पुत्र, ठीक है। और ये लंका का राजा था पहले, रावण ने इसको पुष्पक विमान के साथ भगा दिया। वसुनाम पावक चाश्मि, वसुनाम पावक किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पकाया जाए अग्नि, तो अग्नि अग्नि में मैं वसु हूं, ऐसे होगा ना, तो स्वयं कुबेर यक्ष है, वसुओं में मैं अग्नि हूं। अग्नि भी बहुत प्रकार की है, 8 वसु हैं, अष्ट वसु हैं, आप ध्रुव सोम धर्म अनिल पावक प्रत्योष और प्रभाष, ये 8 वसु है, इसमें मैं अग्नि हूं। और जो पर्वत जिसका शिखर बहुत बड़ा है उसमें मैं मेरु पर्वत हूं। 11 रुद्रों में शंकर हूं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भगवान का गुण अवतार है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। कौन से गुण का अधिपति है शंकर जी, तमोगुण का। और यक्ष और राक्षसों का अधिपति है कुबेर, जो देवताओं का कोषाध्यक्ष है, ये भगवान का प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत शिखर वालियों में है, उसके अंदर क्या अधिक मिलता है? सोना मिलता है। यहाँ सोना नहीं लिखा है, कुछ और ही लिखा है, सब धातु निकलते हैं वहां से। हाँ, सोना लिखा है, सारा पर्वत ही सोने का है जी। उसी का टुकड़ा कोई गिरा था जो त्रिकूट पर्वत लंका में था, उसी का टुकड़ा कोई गिरा था। त्रिकूट पर्वत नहीं, वहां त्रिकूट नहीं, उसका नाम है लंका है त्रिकूट, उधर भी नाम है त्रिकूट मेरे ख्याल में। गंगा सुमेरु पर्वत से नहीं आती। आगे 24वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रोदसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। प्रोदसाम का मतलब प्रोहित, प्रहतु में जो मुख्य प्रोथ पार्थ बृहस्पति है देवताओं का, वो मेरी विभूति है। प्रोहितों में मुख्य प्रोहित बृहस्पति मेरी विभूति है, जो देवताओं का गुरु है। सेनानी नाम स्कंद, जो देवताओं के सेना है उसका सेनापति, उसमें मैं स्कंद हूं। स्कंद शंकर जी का पुत्र है, जिसका दूसरा नाम है मोरगा, और का नाम क्या है? कार्तिकीय। कार्तिकीय इसलिए कि कृतिकाओं ने उसको दूध पिलाया था, जो मात्रा कृतिका है, वो जब प्रकट हुआ ना तो उसको दूध पिलाने में कोई वाला कोई नहीं, तो कृतिका जैसे मात्रा उन्होंने उसको दूध पिलाया तो उसका नाम हो गया कार्तिकीय। जैसे कौनते है, जैसे कौनते है कुंती का पुत्र, ऐसे कार्तिकीय ने दूध पिलाया तो हो गया कार्तिकीय। और स्कंद ये उत्पन्न करने के लिए कोई ऐसा चाहिए सेनापति जो विशेष कुछ असुर था उसका सा, और वो शंकर से ही उत्पन्न हो सकता था। शंकर को समाधि में कामदेव ने विचलित किया और फिर स्कंद की उत्पत्ति हुई और कृतिकाओं ने दूध पिलाया, तो इसका नाम ये है। सरसाम अस्मि सागर, जलाशय में मेरी विभूति सागर है। कृतिकाएं हैं, जैसे जैसे मातृकाएं हैं ऐसे कृतिकाएं हैं। मुझे यक्ष की माता का पता। प्रभुपाद जी लिखते हैं देवता स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसको इंद्र लोक कहते हैं, और बृहस्पति इंद्र का पुरोहित है। भाई जो देवताओं में इंद्र है महान, ऐसे पुरोहितों में इंद्र का पुरोहित बृहस्पति महान है। जैसे राजाओं में इंद्र है, इंद्र को कहते हैं देवराज, तो जैसे राजाओं में इंद्र है ऐसे सेनापतियों में कार्तिकेय या स्कंद है, पार्वती और शंकर का पुत्र। आगे का श्लोक पढ़ते, कल इस अध्याय को पूरा करना चाहिए, जैसे हो जाएगा। महर्षीणां भृगुरहं ग्रामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहं, जो सप्त महर्षि पहले ब्रह्मा जी के पुत्र में है, उनमें मैं मेरी विभूति भृगु है। ग्राम अस्मि एकम अक्षरम, जो ग्रह अ अ जो शब्द है, ये हमारे क ख ग में जो अ शब्द है वो मेरी विभूति है, बिना आ के कुछ नहीं बनेगा। तो ग्रह नाम अक्षरा, तो शब्दों में मैं ऐसे ग्रह नाम एकम अक्षरम, अस्मि एकम अक्षरम, वो ओम भी है, या ओम लिखा है कि नहीं लिखा है, अ लिखा है या ओम लिखा है? ओम लिखा है, तो अकारों में मैं ओम हूं, ठीक है, और यज्ञों में मैं जप हूं, और जो चीज़ें हिलती नहीं हैं, सदा एक जगह स्थिर रहती हैं, उसमें मैं हिमालय हूँ। इस श्लोक को एक और श्लोक के साथ मिला के बाहर प्रचार करते हैं, वो है तीसरे अध्याय का श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं मैंने देवताओं को पैदा किया। सह यज्ञ सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसवद्वम ईश्वा अष्ट काम दुख। ये यज्ञ मैंने देवताओं के साथ मानव सृष्टि की है, आप इस यज्ञ को करो, ये काम धेनु है, आपकी सब इच्छा पूरी करेगा। ये तीसरे अध्याय का श्लोक है। तो हम कहते हैं भाई यज्ञ करो, काम धेनु है, आप सबकी इच्छा पूरी, अब यज्ञ कौन सा करें, अब यज्ञ कौन सा करें, आज कैसे यज्ञ करें, हमारा फ्लैट छोटा है, घी मिलता नहीं है, पुरोहित मिलता नहीं है। तो क्या भगवान जब कहते हैं कि यज्ञ करो तो कोई ऐसा यज्ञ तो होगा जो सब लोग कर सकें, सब समय कर सकें, सब जगह कर सकें और जिसमें कोई खर्च भी नहीं हो और आपकी सारी इच्छा पूरी कर दे। तो फिर इस श्लोक को कहते हैं, भगवान कहते हैं सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, तो हरे कृष्ण मंत्र जप। ये सीधे दो श्लोकों को जोड़ के लोगों को हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, ये भगवत गीता का प्रमाण है और चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है, संकीर्तन यज्ञ। तो जप व्यक्तिगत यज्ञ है, संकीर्तन सामूहिक यज्ञ है। तो ये दोनों यज्ञ वो भगवान की विभूति है। और इसको जब हम प्रचार करते हैं तब कहते हैं स्थावराणाम हिमालय, जैसे हिमालय अचल है, ऐसे जप करना आपके जीवन में अचल है। आप इसमें ठीक तरह से लग जाओगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे, नहीं तो ये यही क्यों लिखा हिमालय, और कई जगह लिखना चाहिए था ना, जप को अचल बताने के लिए, अचल साधन है, आपको जीते जी भी करना पड़ेगा, भगवान के धाम में चमे भी करता बोलते उधर ही कीर्तन चलेगा, जप चलेगा, ये अचल है। तो ये प्रचार के लिए हमको ये श्लोक जो है ना, हम इसको ऐसे ऐसे उपयोग में लाते हैं। ब्रह्मा के पुत्रों में मैं भृगु हूं, अक्षरों में मैं प्रणव हूं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। क्यों कारण देते हैं बलदेव विद्याभूषण, क्योंकि इस यज्ञ में कोई हिंसा नहीं है, जप यज्ञ में कोई, इसलिए भगवान की विभूति जप यज्ञ क्यों है, इसमें कोई हिंसा नहीं है। मेरु और हिमालय दोनों को अगर देखें तो दोनों विभूतियां हैं, एक ऊंचा ज्यादा है और एक अचल है। तो ब्रह्मा के पुत्रों में प्रभुपाद जी लिखते हैं भृगु है, ओमकार अक्षरों में है, और प्रभुपाद जी सीधा जप के लिए क्या लिख रहे हैं, देखो यज्ञ में मैं हरे कृष्ण महामंत्र हूं, बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। क्यों बोला, पहले यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, हरे कृष्ण मंत्र में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए ये क्या है, सरल भी है और शुद्ध भी है, शुद्ध भी है और सरल भी है। जो भी क्या इसके बाद क्या लिखा है, जो इस जगत में खाली स्थान भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, वो क्या है शब्द लिखा हुआ, जो कुछ शुभ, अंग्रेजी में सबलाइम है, इसलिए हिमालय भगवान की विभूति है। मेरु पहले कहा गया था वो ऊंचाई में ऊपर है, परंतु वो चलता है, हिमालय अचल है। अब 26 अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। अश्वत्थ सर्व, सारे वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। वैसे अश्वत्थ को पीपल समझना चाहिए सही माना में। एक तो है वट वृक्ष, और ये अश्वत्थ, नहीं वट वृक्ष अलग है, ये पीपल, इसका अर्थ वास्तव में पीपल है। वैसे हम जानते हैं पीपल विष्णु का प्रतिनिधि है, हम जानते हैं सामान्य पीपल की ही पूजा होती है, तो अश्वत्थ का अर्थ है पीपल। देव ऋषि नाम नारद, देवताओं के ऋषियों में मैं नारद हूं। अब कोई आप में से थोड़ा सा ये भी ढूंढे कि कितने भगवान के अवतार विभूतियों में है। नारद अभी आ गया, पहले हमने कौन से पढ़े, पहला वाला पढ़ा नहीं, इसमें विभूति में कौन से आए हैं अभी तक। वामन देव आया, अब आया नारद, अब देवता कितने हैं वो भी गिनती करो कि देवता इसमें से कितने हैं, और भौतिक चीजें कितनी हैं ये भी एक अलग विभाजन इसका किया जाता है, कभी कभी एक बिल्कुल चार्ट बनाया जाता है कि विभूतियों में इतने तो भगवान के अवतार हैं, इतने देवता हैं, इतने ऋषि हैं, इतने भौतिक वस्तुएं हैं। तो ऐसा भी एक दिमाग में विचार करके देखना चाहिए। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ गंधर्वों का राजा हूं। ये चित्ररथ अर्जुन का मित्र है, अर्जुन ने इसके रथ को जला दिया था, इसके रथ को अर्जुन ने जला दिया था, चित्ररथ ये अर्जुन का मित्र है और ये भगवान की विभूति है। सिद्धानाम कपिलोऽस्मि, जो सिद्धों में मैं कपिल हूं, एक और भगवान का अवतार आ गया, सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो चार ये विभूतियां सब मिलाएंगे मेरे ख्याल में, कितनी विभूतियां हैं ढूंढना, गिनती की हुई है पहले। पीपल ट्री देखो सीधा लिखा है, बलदेव विद्याभूषण लिखा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं, नारद ऋषियों में हूं। क्यों दूसरों का नाम, बोला भक्ति है, नारद भक्ति के महान आचार्य हैं, इसलिए मेरी विभूति है। तो नारद को क्यों महान कहा, क्योंकि भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। गंधर्वों में चित्रहोश हूं, क्योंकि गंधर्वों का कार्य क्या होता है, बड़ा अच्छा गाते हैं, तो उनमें सबसे अच्छा गाने वाला चित्ररथ है। सिद्धों में मैं कपिल देव हूं, जो किसका बेटा है, करदम और देवहूति का, जिसके पास सब सिद्धियां होती हैं, छोटा बनना बड़ा होना ये। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंग्रेज में प्रभुपाद लिखा अश्वत्थ को बनियान ट्री, बनियान ट्री, ये बनियान शब्द कहां से आया पता है, बनिया जो बेचने के लिए क्या है, पहले कोई दुकान तो होता था ना, जो बड़ा पेड़ छाया वाला उसके नीचे बैठते थे, तो बोला कहाँ जाए, बोला बनिया के पास जाओ, बोला बनिया कहाँ, वो बोला बनिया ट्री के नीचे बैठा है, तो ऐसे इसका नाम बनियान हो गया, अंग्रेजों का नाम बनियान ऐसे हो गया। वणिक, वणिक जहां बैठे, बनिया जहां बैठे, जिस पेड़ के नीचे बनिया बैठे वो हो गया बनियान। जैसे हमारे भारतीय कहते थे गंगा जी जा रहे हैं, तो अंग्रेज को गंगा जी कहने नहीं आया, गांजीज बोल दिया, तो हम गंगा को अब गांजीज कहते हैं, शब्द है गंगा जी। रविंद्रनाथ ठाकुर है और अंग्रेज ने उसको कर दिया टैगोर, तो अंग्रेजों को ऐसा सब शब्दों को बिगाड़ दिया, संस्कृति को ही बिगाड़ दिया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, अच्छा गाता है, सिद्धों में मैं कपिल हूं, ये भगवान का अवतार है जिन्होंने सांख्या दर्शन का उपदेश भागवत में दिया है। फिर बाद में एक और कपिल आया जो नास्तिक था, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये कौन सा आया हमें मालूम नहीं आज तक, नास्तिक कपिल कौन आया, कहां कहां वो नास्तिक कपिल है, हरे कृष्णा 27वां श्लोक, उच्चही सर्वसम्मश्वानां विधीमाम अमृतो उद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणाम च नराधिपम। अश्व कहते हैं घोड़े को, और जिस घोड़े का नाम है उची शर्वा, ये प्रकट हुआ था समुद्र मंथन से, इसको मेरी विभूति मानो जिसको बलि महाराज ने ले लिया। और हाथी निकला था समुद्र मंथन से, उसका नाम था ऐरावत, वो ले लिया इंद्र ने, वो है मेरी विभूति। और नराणाम नराधिपम, मानवों में राजा, नराधिप, नराधिप का मतलब राजा, मानवों में मैं राजा हूं, नर नर श्रेष्ठ राजा। और ये दोनों को विभूति भगवान क्यों बताते हैं, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकले हैं, ठीक है, जो अमृत के लिए मंथन हुआ था। ये ठीक है, उच्च ही शर्वा का मतलब क्या होगा, जिसकी बड़ी महिमा गा, उच्च सुर से कहा जाए, बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, तो उच्च ही शुरुआ, ऊंचे स्वर में जिसकी महिमा गाई जाए, इसलिए उसको उच्च शर्व कहा। राजा जो धर्म के ऊपर चले और जो शक्तिशाली हो, 27वां श्लोक हो गया, 28 ओ अभी तो 27 हो गया। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, उस समुद्र मंथन से विष निकला जिसने शंकर जी ने पान किया, और उसके अंदर से बहु एक घोड़ा निकला ऊंचाई शर्मा, फिर एक हाथी निकला, ये पशु हैं परंतु अमृत के साथ प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको भगवान की विभूति कहा गया है। मानव में राजा भगवान का प्रतिनिधि है, वैसे आज तक नेपाल के राजा को अब तो नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, हाथ भी नहीं मिलाते थे, कि भगवान का प्रतिनिधि है, विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है राजा को। और राजा किसको बनाया जाता है, भगवान उनको बनाते हैं जिसमें देवताई गुण हो, जो राज का अच्छी तरह से पालन करें। कैसे राजा भगवान की विभूति हैं, ये राजा नहीं जो आजकल हैं, कौन से विभूति हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, साक्षात भगवान स्वयं रामचंद्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम राजा का उदाहरण थे, जो अपने प्रजा का सुख देखते थे। वैदिक साहित्य में राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, परंतु इस कलयुग में सब कुछ विकृत हो चुका है, बिगड़ चुका है, अब राजाओं की परंपरा समाप्त हो गई, और पहले राजाओं के राज में प्रजा बहुत सुखी हुआ करती थी। ये प्रभुपाद जी थोड़ा सा राजा के ऊपर परिचय, 28वां श्लोक, आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुका प्रजनस्यास्मि कंद्रपहा सर्पानामस्मि वासुकिः। आयुध का मतलब हथियार, उसमें मैं वज्र हूँ जो इंद्र के पास है, दधीची की हड्डियों से बना। धेनुनामस्मि कामधुक, गायों में मैं कामधेनु गाय हूँ, जो प्रजनस्यास्मि कंद्रप, कंद्रप कहते हैं कामदेव को, और प्रजन कहते हैं जिसके द्वारा संतान उत्पन्न किया जाए, तो वो काम मेरी विभूति है। सर्पानाम अस्मि वासुकी, वो सर्प, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, वासुकी हूँ, आगे एक और सर्प भी आएगा विभूति, एक एक मुख वाला, एक ज्यादा मुख वाला, ये एक मुख वाला होगा, वो ज्यादा वाला होगा। तो संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम है वो मेरी विभूति है, ऐसा एक श्लोक हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा है भगवान की विभूतियों में, कौन सा था, धर्मा वृद्धो कामो अस्मि भरतृषभ, ये दो श्लोक ऐसे हैं जहाँ कामदेव भगवान की विभूति वर्णन किया गया है, काम का भाव, भगवान की विभूति दो जगह पे है, सातवें अध्याय में भी है और यहाँ भी है। और प्रभुपाद सावधान, बलदेव भट्ट विद्याभूषण भी सावधान करेंगे, प्रभुपाद निश्चित रूप से सावधान। तो एक फन वाला सांप वासुकी कहलाता है, भगवान के लोक में जो गाय हैं उनको कहते हैं सुरभि गाय, वो सब इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान सुरभि गायों को पालता है, जो चाहिए वो आपको दे देंगे, जब चाहो तब दूध दें। कंदर्प के लिए प्रभुपाद ने लिखा है, अच्छे संतान उत्पन्न करने का भाव जो है काम का, वो मेरी इच्छा है, वो इच्छा, वो मेरी विभूति है। इसलिए कंदर्प भगवान की का प्रतिनिधि है, ये देवता है कामदेव। लेकिन जो कुत्ते बिल्ली की तरह भोग करते हैं इंसान, वो भगवान की विभूति नहीं है। अब यहाँ कथा को पूरी करते हैं, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कृष्ण कृपा से कल प्रयास करेंगे खत्म हो जाए। अब एक प्रसाद है थोड़ा सा आप